ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 16वां अध्याय। वंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक संख्या 6। वसु काले उपादत्ते काले च अयम् विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवत् विभुः। वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्भिः। वसुः धन, काले समय पाकर, उपादत्ते वसूल करता या निकालता है, काले यथा समय, च भी अयम यह राजा पृथु, विमुंचति वापस कर देता है, समह उतना ही बराबर, सर्वेषु सब भूतेषु जीवात्माओं में, प्रतपन चमकते हुए, सूर्यवत सूर्यदेव के समान, विभुः शक्तिमान। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव हरेक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को वितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को उड़ाता है और वर्षा ऋतु में उसकी प्रचुर मात्रा लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। तात्पर्य, इस श्लोक में कर वसूल करने की विधि की सुंदर व्याख्या हुई है। कर वसूली तथाकथित प्रशासनिक अध्यक्षों की इंद्रिय तुष्टि के हेतु नहीं की जाती। कर से प्राप्त आय को आवश्यकता पड़ने पर, यथा दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय, नागरिकों में बांटना चाहिए। इस आय को सरकारी नौकरों को उच्च वेतन तथा अन्य भत्ते देने में कभी भी व्यय नहीं देना चाहिए, होने देना चाहिए। किंतु कलयुग में नागरिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि जनता से विविध रूपों में कर संग्रह किया जाता है, किंतु उसका व्यय प्रशासकों की व्यक्तिगत सुविधाओं में कर दिया जाता है। इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। सूर्य पृथ्वी से लाखों मील दूर है, और यद्यपि वह पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता, तो भी सागरों से जल ग्रहण करके वर्षा ऋतु में समग्र लोक की भूमि पर इसे वितरित करके भूमि को उपजाऊ बनाता है। आदर्श राजा के रूप में राजा पृथु राज्य के ग्राम ग्राम से ग्राम ग्राम में सूर्य के समान ही यह कार्य करेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज पृथु की प्रशंसा वंदीजन कर रहे हैं और इस श्लोक में कहते हैं कि राजा पृथु सूर्य के समान प्रतापी होंगे, तेजस्वी होंगे, और जिस तरह से सूर्य सागरों से पानी लेता है, खींच लेता है, और फिर उसी जल को भूमि पर वर्षा के रूप में लौटा देता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है, ठीक उसी तरह से ये राजा पृथु अपने नागरिकों से कर स्वीकार करेगा और इसी कर को आवश्यकता के समय नागरिकों के हित के लिए प्रयोग करेगा। कर स्वीकार करने की विधि यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। राजा को कोई स्वार्थी व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहिए जो केवल प्रजा से कर वसूल करे लेकिन प्रजा के हित के लिए कोई कार्य न करे। आजकल हम देखते हैं कि सारे सरकार जो है कर के ऊपर कर लगाते जा रहे हैं प्रजा के ऊपर, जिस वजह से प्रजा इस कर के बोझ के नीचे इतनी दबी हुई है कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि किस तरह से हम कर को बचाएं, और फिर कोई न कोई किसी न किसी तरह से अपने वास्तविक आमदनी को छुपाते हैं या सरकार को घोषित नहीं करते, क्योंकि सरकार भी इस कर का उपयोग सही तरह से नहीं करती है, क्योंकि प्रजा को पता होता है कि जो भी कर सरकार हमसे वसूल करने वाली है वो ज्यादातर सरकारी अध्यक्ष इनके सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जाएगी, न कि नागरिकों की भलाई के लिए। लेकिन वैदिक काल में ऐसी अवस्था नहीं थी। वैदिक काल में प्रामाणिक क्षत्रिय हुआ करते थे जो कि धर्म परायण थे और वास्तव में प्रजा का हित चाहते थे, जिस तरह एक पिता अपने बच्चों का हित चाहता है। और इसलिए राजा केवल उतना कर वसूल करते थे जितना कि शास्त्र में बताया जाता था। शास्त्र में बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपने आमदनी का एक चौदहवां हिस्सा अर्थात 25% आय आमदनी जो है वो कर के रूप में राजा को देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इससे कम भी दे तो वो सही नहीं था, और अगर राजा इससे ज्यादा भी वसूल करे तो वो राजा का भूल भी था। लेकिन आजकल कर वसूल करने की विधि कोई शास्त्रों पर आधारित नहीं है, लेकिन सरकारी अध्यक्षों के मनगढ़ंत कोई फॉर्मूला के हिसाब से होता है। आज कोई एक अमुक कार्य कर है तो कल वो बदल दिया, फिर परसों और कुछ नई बात हो गई। इस तरह से हर दिन कर जो है ये बदलते रहता है, और प्राय देखा जाता है कि कर तो बढ़ता ही रहता है। लेकिन राजा जो वैदिक काल में हुआ करते थे वो शास्त्रों के हिसाब से कर की वसूली करते थे, और सभी लोग धार्मिक थे, शास्त्रों का पालन करते थे, इसलिए वो भी जानते थे कि राजा को कितना कर वसूल करना चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि ऐसे धर्म परायण राजा को कर हमें देना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रजा में राजा को कर देने से हिचकिचाता नहीं था, इनकार नहीं करता, खुशी से दे देती थी सारी प्रजा, क्योंकि वो जानते थे कि राजा जो है वो इसका प्रयोग सही ढंग से करने वाले हैं। वास्तव में राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, और दूसरा कर्तव्य होता है कि आवश्यकता के समय जो भी धन कर के रूप में उसने वसूल किया हुआ है उसको प्रजा में लौटा दे। प्रजा में से सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी हुआ करती थी ब्राह्मणों की। तो राजा का कर्तव्य रहता था कि ब्राह्मणों को सही तरह से वो दान दे। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में हो, रामायण में हो, महाभारत में हो, अन्य ग्रंथों में हो, जैसे राजा के कोई पुत्र हुआ या कोई बड़ा अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जैसे कोई यज्ञ इत्यादि, तो ऐसे अनुष्ठानों में अवश्य राजा अनेक ब्राह्मणों को निमंत्रण देते थे। हजारों लाखों की संख्या में ब्राह्मण आते थे और हर एक ब्राह्मण को वो दान देते थे, सोना चांदी देते थे, हीरे जवाहरात देते थे, गायों का दान, गौओं का दान करते थे, कभी कभी भूमि भी दे दिया करते थे, और जो भी ब्राह्मण मांगते थे वो दे देते थे। क्योंकि क्षत्रिय जानते थे कि ब्राह्मणों को समय नहीं है अपने आमदनी कमाने के लिए, और न ही उनकी प्रवृत्ति इस तरह की है। ब्राह्मणों का कार्य क्या है कि वो शास्त्रों को पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं और समझाएं, ताकि सारी प्रजा धर्म के मार्ग पर चल सके। ये ब्राह्मणों का कार्य हुआ करता था। और अगर ब्राह्मण अपने आमदनी के लिए दिन भर परिश्रम करता रहे तो उसे न तो शास्त्रों को का अध्ययन करने के लिए समय होगा और न इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए समय होगा। तो इसलिए ब्राह्मण समाज के सबसे श्रेष्ठ वर्ग माने जाते थे। इसलिए क्षत्रिय इनको दान दिया करते थे ताकि इनको कोई दाल रोटी की चिंता न हो, भूमि की चिंता न हो, केवल वो अपना अधिक समय शास्त्र के अध्ययन के लिए और यज्ञ करने के लिए बिता सके। इससे क्या होता था कि राज्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती थी, और इन ब्राह्मणों की तपस्या, अध्ययन, पूजा पाठ, यज्ञ की वजह से सारे राष्ट्र भर में एक शास्त्र आर्थिक दृष्टि से इतना विकास होता था और इतनी समृद्धि बढ़ जाती थी कि किसी भी चीज का अभाव या किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सारी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करती थी, यहां तक कि माता प्रकृति भी प्राकृतिक चीजों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान कर देती थी। और ये क्यों होता था? क्योंकि धर्म के सिद्धांतों का पालन होता था, लोग धार्मिक थे, भगवान के आदेश का पालन करते थे, इसलिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करता था। तो ब्राह्मणों की तपस्या, उनके यज्ञ, उनके शास्त्रों का अध्ययन, ये राज्य के आर्थिक समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन आजकल इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लोग ये नहीं समझते कि जो भगवान के भक्त हैं, जो तपस्या वो कर रहे हैं, जो हरिनाम संकीर्तन वो कर रहे हैं, और जो भी अन्य क्रियाएं भगवान की सेवा में वो कर रहे हैं, उनकी वजह से वास्तव में जो समाज में अन्य पाप हो रहे हैं उनका कितना, किस हद तक प्रतिकार हो रहा है। जो भी कुछ अभी इस देश में चल रहा है वो केवल इसीलिए चल रहा है कि भगवान के भक्त थोड़ी बहुत तपस्या कर रहे हैं। अभी भी भगवान के भक्त रहे हैं और भगवान के भक्त नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, इसलिए ये समाज अभी भी चल रहा है। भले समाज लंगड़ा हो गया हो, गूंगा हो गया हो, अंधा हो गया हो, लेकिन फिर भी हड़बड़ाते हुए किसी न किसी तरह से चल रहा है। वो केवल इसलिए कि थोड़े बहुत संख्या में भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं। तो क्षत्रिय ये समझते थे, इसलिए वो दिल हृदय खोलकर उदार हृदय से ब्राह्मणों को दान देते थे। और ब्राह्मण भी कैसे थे? प्रामाणिक ब्राह्मण थे, जो इस दान को स्वीकार करते थे, लेकिन उतनी ही मात्रा में उस दान को अपने लिए रखते थे जितना बिल्कुल आवश्यक था, उससे ज्यादा नहीं। जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, जब वो इंद्रप्रस्थ के राजगद्दी पर बैठे थे, तो उस समय उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, राजसूय यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो आप जाकर अलग अलग प्रांतों से धन राशि, तुम धन का संग्रह करना। तो अर्जुन ने जाकर इधर उधर के जो छोटे मोटे राजा थे उनको हराया और उनसे धन प्राप्त किया, और एक बार इसलिए अर्जुन का नाम हुआ धनंजय, जो धन का संग्रह करता है महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के लिए। तो एक बार अर्जुन हिमालय में भी गए थे इधर उधर भ्रमण के दौरान, और एक जगह उनको बहुत सारा सोना मिला, इतना सोना कि मान लीजिए कि सोने का भंडार है, कीमती कीमती मूल्यवान हीरे वगैरह। तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सारा सोना, और यह भी ऐसा फेंक दिया गया है कि मानो कोई कचरा है, जैसे कचरे के डब्बे में कोई कचरा फेंक देते हैं, यहां पर सोना मानो ऐसे है कि जैसे कचरा है। अर्जुन को बाद में पता चला कि ये सोना और ये हीरे वगैरह ये ब्राह्मणों ने वहां फेंक दिए थे। जो भी धन या दान में मिला था ब्राह्मणों को, उन्होंने थोड़ा केवल केवल थोड़ा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपने पास में रख दी, और सोचा कि हम इतना सब लेके क्या करेंगे, ये सोना चांदी हीरे जवाह हमारे लिए क्या काम के हैं, हमारा काम है तपस्या करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और प्रचार करना। अब ये सब धन वगैरह रख के ये तो हमारे काम की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, स्वीकार करना तो हमारा काम है लेकिन इतना प्रयोग करना हमारा काम नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सारा जो भी धन था वो जाके जंगल में फेंक दिया, कोई काम की वस्तु नहीं उनके लिए। और फिर अर्जुन जैसे क्षत्रिय ने जाकर उसको फिर से ले लिया और प्रजा के भलाई के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हृदय खोलकर क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देते थे, और ब्राह्मण क्योंकि उनका कर्तव्य होता है क्षत्रियों से दान लेने के लिए, क्षत्रियों के उद्धार के लिए ब्राह्मणों को दान लेना चाहिए, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं लेते थे। तो ब्राह्मण भी प्रामाणिक थे, क्षत्रिय भी प्रामाणिक थे। महाभारत में और एक हम कथा पढ़ते हैं कि जब राजा जरासंध के दरबार में कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में आए थे, हालांकि जरासंध राजा समझ गए कि ये तो ब्राह्मण जैसे दिखते नहीं है, हालांकि ब्राह्मण अपने आप को कह रहे हैं और ब्राह्मण के पोशाक पहना हुआ है, लेकिन फिर भी इनके शरीर से तो लगता नहीं है कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये तो क्षत्रिय लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के वेश पहनकर आए हैं, इसलिए जिस तरह से मैं ब्राह्मणों का आदर सत्कार करूंगा और उनको दान दूंगा और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, इसी तरह से मुझे इन तीनों को भी, इन तीनों के साथ में वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा इन तीनों से कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, आपकी क्या इच्छा है, कहिए, मैं इस इच्छा की पूर्ति कर सकता हूं। तो उस समय कृष्ण, अर्जुन और भीम ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। तो उस समय जरासंध ने कहा, कृष्ण मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तुम रणछोड़ हो, रणभूमि छोड़कर भाग गए थे मथुरा से, इसलिए मैं ऐसे लोगों से युद्ध नहीं करता जो क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि से भाग के जाते हैं, तो तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करता, तुम योग्य नहीं हो, और अर्जुन मेरे से उम्र में कम है, तो जो उम्र में से कम है उनसे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं भी क्षत्रिय हूं, लेकिन भीम तुम मेरे बराबर के हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ में कुश्ती करूंगा या जो भी युद्ध है वो तुम्हारे साथ में करूंगा। तो खैर, कहने की बात है कि जरासंध जैसा असुर भी इस विधि का पालन करता था कि ब्राह्मण जब आते हैं या जो ब्राह्मण के पोशाक में भी भले आते हैं तो उनको दान देने की जो प्रवृत्ति थी वो उनके अंदर भी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने ही सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें क्षत्रिय हृदय खोलकर दान देते थे, ब्राह्मण केवल उतना अपने पास रखते थे जितना आवश्यक था और बाकी वो भी बांट देते थे या तो फेंक देते थे, और फिर उस धन को फिर से क्षत्रिय एकत्र करके प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से ब्राह्मण जब शक्तिशाली होते थे, शुद्ध होते थे, तो क्षत्रियों को भी वो अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते थे और क्षत्रिय भी प्रामाणिक हो सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्राह्मणों का पतन होने लगा कलयुग की शुरुआत में, तो धीरे 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 से क्षत्रिय भी अपने मार्ग से डावाडोल होने लगे, हटने लगे। और जैसे क्षत्रिय प्रामाणिक नहीं रहे तो वैश्य भी प्रामाणिक नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि जब क्षत्रिय अपने कर जो हम कर दे रहे हैं, अपने कड़ी मेहनत का जो फल है जो हम कर के रूप में राजा को दे रहे हैं, और ये राजा इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो मैं राजा को पूरा कर क्यों दूं? मैं भी राजा के साथ ईमानदार क्यों हूं? जब राजा ईमानदार नहीं है तो मैं ईमानदार क्यों बनूं? इस तरह से वैश्यों का पतन हो गया। और जब वैश्यों का पतन हो गया तो वो भी शूद्रों का देखभाल नहीं करते, जैसे कि वैश्य का कर्तव्य होता है कि जो भी शूद्र उसके लिए सेवा कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से खुश रखना, उनको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, कपड़े देना, देखभाल करना। तो जब शूद्रों ने देखा कि ये वैश्य है, ये भी चोरी कर रहे हैं, सरकार को दान नहीं दे कर नहीं दे रहे हैं और हमारा देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो हम भी क्यों अच्छी तरह से सेवा करें? तो इस तरह से शूद्रों का भी पतन हो गया। लेकिन शुरुआत हुई ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सर के बराबर होता है। सर मस्तिष्क जैसे अच्छी तरह से काम करेगा तो सारा अच्छा शरीर जो है वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। पहले जमाने में वैश्य जो कैसे हुआ करते थे, इसकी एक छोटी कहानी याद आती है कि एक बार एक किसान था और इस किसान ने अपनी भूमि, अपनी जमीन या उसका एक हिस्सा किसी दूसरे किसान को बेच दिया और दूसरे किसान ने खरीद लिया और वहां पे हल चलाने लगा, वहां कृषि का काम आरंभ कर दिया। अब एक बार जब ये दूसरा किसान इस भूमि में हल चला रहा था तो भूमि के किसी हिस्से में हल अटक गया। जब हल अटक गया तो उस किसान ने देखा कि क्या कारण है कि मेरा हल अटक गया है, तो भूमि को खोदना पड़ा और खोदने के बाद में उसने देखा कि यहाँ के एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा है, इस डब्बे के भीतर क्या है? खोल के देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ तो बहुत सारा सोना है, हीरे हैं, कीमती कीमती पत्थर हैं। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए किसान। और ये दूसरे किसान ने ये डब्बा जो है पहले किसान के पास वो ले गया और कहने लगा कि महोदय, ये जमीन मैंने आपसे खरीदी थी और आपके आपसे खरीदे हुए जमीन में ये बक्सा मुझे मिला जिसमें कि ये सारे सोना वगैरह हीरे हैं, ये तो आपके हुए होंगे, आपने कहीं रखे हुए होंगे लेकिन आप भूल गए, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूं। अभी आजकल कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। तो खैर, तो पहले किसान ने क्या कहा, आजकल ऐसे होता भी, अगर कोई ऐसे ईमानदार होता भी तो जल्दी से ले लेता बक्सा, लेकिन पहले किसान ने क्या कहा कि देखो, मैंने जमीन तुम्हें बेच दी और जब जमीन बेच दी तो जमीन के भीतर जो भी है वो भी आपका है, इसलिए भी आपका हो गया, इसे मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो दूसरे किसान ने कहा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैंने आपसे केवल जमीन खरीदी, जमीन के भीतर कोई अगर धन वगैरह हो तो उसको तो मैंने नहीं खरीदा, मैंने सोने को नहीं खरीदा, केवल जमीन को खरीदा है, इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में वाद विवाद होने लगा और आखिर में इसका समाधान कैसे हुआ वो तो दूसरी बात है। लेकिन कहने की बात यह है कि वैश्य भी इतने ईमानदार होते थे कि केवल अपने लिए जो कोटा था वो बिल्कुल वही इस्तेमाल करते थे और कुछ नहीं। जैसे कि ईश उपनिषद में बताया जाता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा द्विधः कस्य स्विद्धनम्। हमें जानना चाहिए अच्छी तरह से कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा कुछ अपना कोटा समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए और बाकी इस कोटा से अतिरिक्त जो भी है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए कि ये किसकी संपत्ति है। तो इस तरह से ये वैश्य इतने प्रामाणिक थे और इसलिए वो कर भी प्रमाणिक तौर से ईमानदारी से दिया करते थे, 25%, जितना आवश्यक है उतना खुशी से देते थे। तो इस तरह से वैश्य जब ऐसे अच्छे ढंग से कर देते तो राजा भी इस तरह से सूर्य के तरह इस धन की का वितरण करते थे। यह सुंदर दृष्टांत या उपमा दी गई है कि जिस तरह से सूरज सागरों से पानी खींच लेता है और पानी को वर्षा के रूप में सारे भूमि में वितरित कर देता है, उसी तरह से राजा भी करता है। राजा भी अपनी कृपा को का वितरण करता है सारी प्रजा भर में। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल होता है जो राजा लोग होते हैं केवल अपने जाने पहचाने लोग या अपने रिश्तेदारों के बीच में धन ज़्यादा एकत्र करते हैं, सुविधाएं बांटते हैं। आजकल अखबारों में इतने सारे केस पढ़ने में आते हैं जहाँ किसी मंत्री ने अपने रिश्तेदारों को जो है कोई विशेष सुविधा दे दी और फिर गलत ढंग से उसने कोई धन प्राप्त किया, अपने सुविधा के लिए इसका प्रयोग किया। तो ये सब चीज़ें आज होती हैं। तो अगर हमें इस परिस्थिति को सुधारना है तो सब हमें शुरुआत करनी है ऊपर से, ऊपर से अर्थात ब्राह्मणों से। अगर समाज में प्रामाणिक ब्राह्मण बनेंगे, प्रामाणिक कृष्ण भक्त बन जाएंगे जो कि हर एक क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण पेश करेंगे समाज के सामने और जो शुद्ध जीवन यापन करेंगे, तो धीरे धीरे से ये ब्राह्मण जो है समाज में फैलकर लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए और ब्राह्मणों को बना सकते हैं। और फिर जब ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाएगी तब वो क्षत्रियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कि प्रामाणिक क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, सोचने का ढंग क्या होना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके कार्य क्या होने चाहिए। तो जब क्षत्रियों को प्रशिक्षण मिल जाता है और अपने 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 कर्तव्य को वो समझ जाते हैं तो फिर क्षत्रिय वैश्यों को और शूद्रों को उनकी रक्षा कर सकते हैं। जब वैश्य देखेंगे कि वास्तव में ये सरकार, ये क्षत्रिय हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो हृदय खोल कर देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि क्षत्रिय इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और जब शूद्र देखेंगे कि वैश्य भी प्रामाणिक हैं, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे तो हम भी इनकी सेवा अच्छी तरह से करें। इस तरह से समाज चलता है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में कितने अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण किया गया है और इसकी व्याख्या की गई है कि समाज को कैसे होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए और उसकी इसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे दिमाग का कैसे देखभाल करना, हाथों का, पैरों का, पेट का कैसे देखभाल करना। अगर हम जानते हैं, अगर डॉक्टर से अच्छी तरह से सीख लें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि, तो शरीर संतुलित रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर शास्त्रों से हम जान लें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कैसे होना होगा तो फिर सारा सामाजिक शरीर वो अच्छे ढंग से चलेगा और इस तरह से समाज में सुख शांति होगी और सभी लोग अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने की ओर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने की ओर आगे बढ़ेंगे और इस तरह से मनुष्य समाज का जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
हरि बोल प्रभु जी। जो कलयुग में अभी आजकल के राजा हैं जो प्रजा से कर वसूली करते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कलयुग के राजाओं के लिए हम बराबर कर देना चाहिए या इनकम टैक्स या सेल टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
हमको तकलीफ में डालने वाले हैं आप। कोई इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वाले बैठे हो तो हमको गिरफ्तार कर देंगे। देखिए हम तो इतना ही कहेंगे कि भक्त हो या न हो नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हालांकि ये शास्त्रों का आदेश है लेकिन अगर हम देश के कानून का पालन नहीं करेंगे तो उसमें खतरा है और उसको स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हम ये आदेश नहीं देंगे या एडवाइस नहीं करेंगे कि कोई देश के कानून को तोड़े। सभी को देश के कानून को बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये शास्त्रों में नहीं बताया हुआ है, इसलिए कोई अगर तोड़ना चाहे तो खतरा उसमें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्रों के दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साथ साथ देश के कानून को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। नहीं तो पहली बात, इसमें क्या तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ हो सकती है, सरकार के अधिकारी व्यक्ति हमें आके कष्ट दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे प्रचार की दृष्टि से भी नुकसान हो सकता है कि भगवान के भक्त हैं लेकिन ये लोग ऐसे करते हैं।